ओम शांति। अब हमारे सामने आदरणीय मोहन सिंघल भाई जी उपस्थित है। इस डायमंड हॉल में बाप दादा के अमूल्य डायमंड कोहिनूर डायमंड भाई जी को हम सभी करतल ध्वनि से स्वागत करते हैं। भाई जी का विशेषता, भाई जी ने स्वयं निराकार शिव बाबा का साकार ब्रह्मा बाबा द्वारा पालना लिया हुआ है और उसके अनुभव के आधार से हम सबको आत्मा की बैटरी रिचार्ज करेंगे। भाई जी का परिचय संक्षिप्त में आपको सुनाती हूँ। भाई जी का शिक्षा स्तर लखनऊ विश्वविद्यालय से वर्ष 1963 में स्नातक डिग्री प्राप्त की तथा धनबाद इंडियन स्कूल ऑफ माइंस से 67 में AISM M.Tech की मास्टर डिग्री प्राप्त की और ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में आपने विशेष जिम्मेवारियां निभाई है और निभा रहे हैं। राजयोग एजुकेशन एंड रिसर्च फाउंडेशन के आप गवर्निंग बॉडी के सदस्य हैं तथा इस संस्था के मैनेजमेंट कमिटी के भी मेंबर है। साइंस और एंड इंजीनियरिंग विंग के आप चेयरपर्सन है। ज्ञान सरोवर परिसर एकेडमी कोऑर्डिनेटर पद पर भी आप विशेष सेवाएं दे रहे हैं। साइंस एंड इंजीनियर विंग के न्यूज़पेपर के आप संपादक भी है और आपका विशेष योगदान आपके निर्देशन में विंग की ओर से भारत के कई राज्य तथा नेपाल में 22 पर्यावरण जागृति तथा आपद प्रबंधन, इस पर आपने विशेष अभियानों करवाया तथा सफलतापूर्वक आयोजन करके इसमें सफलता पाई है और भारत में लगभग 20 शहरों में आपने स्पिरिचुअल आर्ट गैलरीज का भी निर्माण किया है। विशेष आपने विदेश यात्रा दौर में बाबा की संदेश और ब्रह्मा कुमार बाबा के बच्चों की पालना भी की है। USA, UK, रशिया, नेपाल, बांग्लादेश, अफ्रीकन कंट्रीज लाइक केनिया, उगांडा, टांजिया इत्यादि और भी अनेक विशेष महानगरों में आपने सेवा की है और 5 पुस्तक भी आपके द्वारा लिखित रूप में प्रकाशित हुआ है और अनेक अवार्ड भी आपको प्राप्त हुआ है। पर्यावरण श्री, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट तथा स्पिरिचुअल डेवलपमेंट के क्षेत्र में भी आपको 2004 में इंटरनेशनल अवार्ड भी प्राप्त हुआ। ग्रीन आइडल अवार्ड भी आपको भी सम्मानित किया। इस प्रकार राजस्थान से राज्यपाल श्रीमती मार्गरेट आलवा द्वारा पर्यावरण क्षेत्र में आपको ये अवार्ड प्राप्त हुआ। इसी प्रकार भाई जी का परिचय बहुत विस्तार से है, अभी आप उनके द्वारा ही ये पर्यावरण के बारे में भी तथा ये निरंतर याद, इसके बारे में अभी आप सभी भाई जी से द्वारा क्लास सुनेंगे। ओम शांति।
ओम शांति। एक बार हम सभी मिलकर उस रीति से ओम शांति का उच्चारण करेंगे जैसा यज्ञ के आदि में ब्रह्मा बाबा और सभी ब्राह्मण वत्स मिलके ओम ध्वनि का उच्चारण किया करते थे। अंदर सब गहरी श्वास लेंगे और उस श्वास को निकालते हुए ओम की ध्वनि करेंगे और उसके बाद दूसरी गहरी श्वास लेंगे और उसे निकालते हुए शांति की ध्वनि करेंगे। ओम। Shanti. ये ओम शांति की मधुर ध्वनि है, अथवा इसे कहें ये ही महामंत्र है जो कि हम सबको परमात्मा के साथ, बाबा के साथ जोड़ता है। और जितना जितना हम इस ओम शांति की ध्वनि में स्थित होते जाते हैं, केवल उच्चारण मात्र ही नहीं कि एक दूसरे से मिले, ओम शांति कर ली, जैसे लौकिक रीति में नमस्ते, गुड मॉर्निंग आदि करते हैं, ऐसे कई बार हम सब भी लौकिक रीति में ही ब्राह्मण वत्स एक दूसरे से मिलते हैं, ओम शांति की ध्वनि कर लेते हैं। लेकिन वो एक बात है, लेकिन ओम शांति के महामंत्र में, इसके भावार्थ में स्थित होना और उसके बाद फिर ओम शांति की अगर ध्वनि करते हैं तो दूसरे तक केवल हमारी आवाज ही नहीं पहुंचती ओम शांति की, बल्कि हमारे वाइब्रेशन भी वो पहुंचते हैं। तो अभी हम 5 मिनट पहले सब लोग थोड़ा योग करेंगे और उसमें हम सब इस बात का प्रयास करेंगे, जैसा आज का विषय दिया था कि बाबा से फरियाद नहीं करो, याद करो, तो अपना इंट्रोस्पेक्शन करेंगे अंदर बैठ करके बाबा को याद, सब बाबा के पुराने बच्चे हैं तो याद करें और देखें कि कितना समय मैं बाबा की याद में रहा या रही, और कितना समय मैं फरियाद, क्योंकि कुछ ना कुछ तो थोड़ी बहुत मन के अंदर कोई ऐसी बात होती है जिसका हमें ऐसा आभास होता है कि यदि ऐसा होता तो ज़्यादा अच्छा होता, यदि ये करते तो ज़्यादा अच्छी रिजल्ट होती आदि आदि। तो बस एकांत में, एकांत माने एक तो बाहर का तो एकांत है ही है यहाँ पर, मन का एकांत, और तीसरा एक की याद में अंत, एकांत, बस बाबा, मेरा बाबा, मैं और बाबा, बस इस याद में जरा स्थित होके अपने इंट्रोस्पेक्शन अंदर में हम झांके और देखें कोई भी बात में हमारे बाबा से किसी बात की फरियाद तो नहीं है। ओम शांति। मन के कल भी बाबा ने अव्यक्त मुरली में मन के ऊपर कितना कुछ कहा। सार क्या था मन के ऊपर जो बाबा ने बोला, सबने सुना ना, कल ही सुना ना, क्या बोला? मन जीते जगत जीते। बस सिर्फ मन को जीतना है। और कोई भी व्यक्ति को, कोई अपने संस्कार को, संकल्प को, कुछ उसकी करने की जरूरत नहीं। मन को अगर हम जीतते चलेंगे तो अपनी मंजिल को पा लेंगे। तो मैं मुख्य कुछ बातें उस रेफरेंस में बताना चाहूंगा, क्योंकि मुझे साकार बाबा मामा के साथ रहने का काफी वर्षों तक का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और अंतिम समय भी जब बाबा ने शरीर छोड़ा 18 जनवरी 1969, उस समय भी मैं, यद्यपि बहुत दूर पोस्टेड था इंजीनियरिंग करने के बाद आसाम में, लेकिन वहां से बाबा ने अपने पास बुला लिया और 17 और 18 जनवरी 1969 को बाबा की अंतिम कर्मातीत फरिश्ता स्वरूप संपूर्ण स्थिति देखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो उस रेफरेंस में मैं बात बताना चाहूंगा, जो जो कम समय है, जिससे कि हम सब लोग भी बाबा की तरह इसी प्रकार से कर्मातीत बन जाएं, क्योंकि बाबा तो हम बच्चों का ही इंतजार कर रहा है वतन में, और जैसे हम सब संपूर्ण बन के जाएंगे, बाबा हम सब को ले करके फिर हम सब अपने घर परम धाम जाएंगे। तो इसलिए पहला, इतने वर्षों तक जो साकार बाबा के साथ का एक अनुभव, पहला ये रहा कि हम जो भी संकल्प करते हैं या जो कर्म करने के लिए चेष्टा करते हैं, बात करते हैं, तो वो पहले से ही बाबा तक पहुंच जाती है। इसीलिए इस बात का हमें बहुत बहुत अटेंशन रखने की जरूरत है। मैं साकार बाबा की बात बता रहा था, हम इंजीनियरिंग कॉलेज में धनबाद में, इंडियन, अभी तो वो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी धनबाद है, पहले इंडियन स्कूल ऑफ माइंस धनबाद था, वहाँ से हमने पेट्रोलियम इंजीनियरिंग किया। तो वहाँ हॉस्टल में रहते थे और ज्ञान में तो चलते ही थे। तो वहाँ पर एक बार संकल्प आया कि चलो कल गुरुवार है, आज हम भोग बना के यहाँ से हॉस्टल से लेकर के सेंटर पे चलते हैं। उस समय ये है सन 64 की बात, 1964। तो उस समय कोई फोन वगैरह, मोबाइल, ईमेल, ये सब तो कुछ था नहीं, इवन लैंडलाइन भी नहीं होते थे बहुत ज़्यादा, हॉस्टल में तो और ही इसका अभाव होता है। तो बस संकल्प था, प्रेम से उठ करके हमने, और हमारे एक साथी थे, हैं यहाँ पर अभी भी वो, विनोद भाई, हम लोगों ने प्रेम से बाबा को भोग तैयार किया, हलवा शीरा, और ले करके सेंटर पर पहुँचे गुरुवार। अब ये सब करने में देर हो गई, और नॉर्मली 7 बजे भोग लगता था, तो बहन तो 7 बजे भोग ले करके बैठ गई संदली पर, और हम लोगों को तो पहुंचने में देर हो गई, 7:15, 7:30, 7:45 तक भी बज गया, लेकिन बाबा ने संदेशी को, वो तो संदेशी थी, भोग लगाते थे, खींचा नहीं। और जैसे ही हम लोग इतनी देर बाद, 1.5 घंटे बाद पहुंचे, तो बस हमने छोटी बहन से कहा कि ये डब्बी में भोग लाए हैं बाबा को बना के, तो आप थाली में रखेंगे? तो उन्होंने कहा हाँ हाँ, वो रख दिया। और जैसे ही थाली में रखा, बहन को बाबा ने खींच लिया संदेश में। तो बहन ने कहा, बाबा आज मैं इतनी देर से बैठे, रोज तो जब भोग लगाने बैठती हूँ आप दो चार मिनट में खींच लेते हो, आज पौना घंटे तक मैं बैठी रही, आपने मुझे खींचा ही नहीं। तो बाबा ने कहा, देखो बच्ची, उन दोनों बच्चों का हॉस्टल से मुझे संकल्प बार बार आ रहा था, और बच्चों ने कल रात से ही ये संकल्प किया हुआ था, बाबा हम भोग बना के ला रहे हैं, आपको स्वीकार करना है। तो देखो, हमने न बहनों को बोला न किसी को बोला, लेकिन संकल्प किया कि हम भोग बना के ले जाएंगे। बाबा तक पहुंच गया, बाबा ने उसका रिस्पॉन्ड भी दिया, तब तक संदेशी को नहीं खींचा। जब फिर बाबा ने कहा, देखो बच्ची, जब तक बच्चों का भोग नहीं आता तो मैं तुम्हें कैसे खींचता उनका भोग के बिना, जैसे उन्होंने भोग रखा मैंने तुम्हें खींच लिया। तो देखो, हम लोगों का संकल्प पहले पहुंचता। ये बाबा ने मुरलियों में तो बहुत बार बोला है, लेकिन मैं साकार की बात बता रहा हूं कि हम लोगों को संकल्प भी बहुत अटेंशन से करने की जरूरत है, क्योंकि अगर कोई कमजोर संकल्प, विकारी संकल्प, कोई ऐसा संकल्प जो बहुत मर्यादा युक्त न हो, वो संकल्प कर लिया, वो भी बाबा तक पहुंचेगा। बाबा की तो लाइन एकदम बुद्धि बिल्कुल क्लियर है, और बच्चों की एक एक बात बाबा ने बताया था एक बार कि हर बच्चे का टीवी बाबा के पास रखा हुआ है। जब भी कोई बच्चा कोई ऐसा संकल्प करता है, विशेष करके कोई कमजोर संकल्प होता है, और ऐसा संकल्प होता है जो उतना मर्यादा पूर्ण नहीं होता है, तो बाबा तक उसका टीवी ऑन हो जाता है। हजारों टीवी रखे हैं बाबा के बच्चों के, और एक टीवी अगर ऑन हुआ तो नेचुरली बाबा का ध्यान उधर जाएगा। बाबा का ध्यान जाता है तब बाबा को पता चलता है कि अच्छा, ये बच्चा इस समय इस स्थिति से पास हो रहा है। फिर बाबा उसे शक्ति देता है, बल देता है, उसकी बुद्धि को टच करता है कि किस प्रकार से, किस युक्ति से वो इस कमजोरी की अवस्था से बाहर निकाले अपने को। बाबा तो करता है अपना काम, लेकिन अगर बच्चे की बुद्धि की लाइन क्लियर नहीं है, उसका ध्यान कहीं और एंगेज है, अपनी बुद्धि को कहीं और लौकिक अलौकिक किसी बातों में बहुत व्यस्त कर रखा है, तो बाबा की बात को वो कैच नहीं कर पाता। तो इसीलिए कई बच्चे हैं वो कैच कर लेते हैं और इस परिस्थिति से निकल आते हैं, विजयी बन जाते हैं। और कुछ बच्चे होते हैं जो अपने को एंगेज रखते हैं दूसरी आलतू फालतू बातों में, और एंगेज रखा, लाइन बुद्धि की क्लियर नहीं हुई, तो बाबा की बात उन्हें टच नहीं होती, वो कमजोरी के उस संकल्प से नहीं निकल पाते। और कई बार ऐसा होता है कि वो उस कमजोरी के संकल्प से हार खा लेते। तो इसीलिए एक तो ब्रह्मा बाबा की तरह हमें अगर संपूर्ण बनना है, बाबा देखो कितने साल में संपूर्ण बन गया ब्रह्मा बाबा, कितने वर्ष में? सिर्फ 33 वर्ष में। 1919 जब ये ज्ञान शुरू हुआ, 1936-37 में ज्ञान शुरू हुआ, और 69 में तो बाबा अव्यक्त बन गए। सिर्फ 33 वर्ष में बाबा अव्यक्त हो गया। और आज हम सब लोगों में तो कई ऐसे बैठे हैं कि जो जिनको 40, 50, 60, 70 साल भी हो गए, मुझे ही ज्ञान में 60 वर्ष से ज़्यादा हो गए। लेकिन ऐसा बाबा का और क्या क्या पुरुषार्थ था कि बाबा 33 वर्ष में ही संपूर्ण बन गया, तो मैं उस बात को थोड़ा थोड़ा बीच में स्ट्रेस करता जाऊंगा, जिससे हम लोग भी उस मार्ग पर चल के बाबा की तरह कर्मातीत अवस्था को संपूर्ण रीति से प्राप्त कर सके। क्योंकि साकार बाबा के साथ रहने का जब इतने वर्षों तक सौभाग्य मिला तो वो शेयर तो करना ही चाहिए ना अपने भाई बहनों से, जिससे कि सब लोग वो उस संपूर्ण अवस्था को प्राप्त कर सकें। तो एक बात तो ये है कि हम ये अपने संकल्पों पर बहुत ध्यान, हमें याद है जब हम लोग ज्ञान में आए तो बाबा कहते थे बच्चे संकल्प तो कमजोरी के अंत तक चलेंगे, लेकिन कर्मणा से कोई विकर्म नहीं करना है, कर्मणा से अगर कोई ऐसा विकर्म हुआ उसका दुर्भाग्य बहुत बड़ा है, और वाचा से भी किसी को दुख नहीं देना है। हाँ, मन में संकल्प तो अंत तक चलेंगे, ये मैं उनकी बात कर रहा हूँ 1963-64 की, जब हम लोग ज्ञान में आए थे उस समय 1962-63 के समय। तो इसीलिए अभी वो बात नहीं है, अभी तो बाबा कहता है संकल्प की बात तो दूर रही, अगर स्वप्न में भी किसी के प्रति कोई ऐसी बात हुई तो उसका भी बहुत बहुत बड़ा कर्म भोग भी बन जाता है और उसका दंड के भागी भी बन जाते हैं। तो इसीलिए अपने स्वप्न संकल्प और इन सूक्ष्म चीजों पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। नंबर वन, बाबा ने यही करा। नंबर टू, बाबा ने और क्या करा? बाबा जब ज्ञान में आए तो बाबा ये अनुभव करते थे ज्ञान में तो आया लेकिन मन जो है बार बार भाग जाता है, जो हम सबका अनुभव है। तो ब्रह्मा बाबा देखो कितने क्लीन हार्टेड, स्वच्छ दिल के, कभी भी बच्चों के सामने अपनी कमजोरी का भी वर्णन करने का बाबा ने छिपाया नहीं। क्यों? क्योंकि बाबा जानते थे बाबा आगे है, बाबा अपनी कमजोरी का अगर बताएगा तो बच्चों के सामने भी अगर वो कमजोरी आई तो वो निरुत्साहित नहीं होंगे और वो उसका सॉल्यूशन, बाबा ने जो बताया उसका सॉल्यूशन देख के आगे बढ़ते जाएंगे। तो इसीलिए बाबा ने जब देखा मन भाग रहा है बार बार, कभी बिजनेस में भाग जाता है, कभी बच्चों में, पत्नी में, पोतों में, लौकिक में, जहां जहां मन भागता है, आप सभी का अनुभव है, जहां जहां मन को मार्जिन होती है मन वहां, जहां जहां मन का अटैचमेंट है, लगाव है, झुकाव है, बार बार मन वहां भाग जाता है। तो ब्रह्मा बाबा को भी ये अनुभव होता था, लेकिन बाबा ने ये कह के नहीं छोड़ दिया जैसा अक्सर हम लोग करते हैं, दुनिया वाले भी करते हैं, क्या करें मन बड़ा चंचल है, भाग जाता है, हम चाहते तो नहीं लेकिन मन भाग जाता है। तो इसीलिए ये कह के छोड़ नहीं देना है बल्कि इस पर कार्य करना है। बाबा ने कैसे कार्य किया? बाबा ने करा मन को पत्र लिखा, वो पत्र की कॉपी हम लोगों को भी हिंदी में ट्रांसलेट करके दी गई थी, बहुत साल पहले की बात है। बाबा ने मन को लिखा, हे मन, मैं आत्मा राजा हूं, तू मेरा मंत्री है, लेकिन तू ज्यादा बलशाली हो गया और मुझ आत्मा राजा को तुमने कमजोर कर दिया, और मैं आत्मा राजा भी तेरे कहने पर तेरे पीछे पीछे भागती रही। ऐसी बाबा ने बुद्धि को भी पत्र लिखा, हे बुद्धि, तू भी मन के कहने पर मन के पीछे पीछे चलती रही और मैं भी तुम दोनों के पीछे पीछे भागता रहा और मैं कमजोर होता चला गया। लेकिन दूसरे पहरे में बाबा ने लिखा, लेकिन हे मन, हे बुद्धि, अब मैं तुम्हें बता देता हूं कि मैं आत्मा राजा अपने स्वधर्म में स्थित हो रहा हूं और हो गया हूं, और अब मैं तुम्हारे कहने पर तुम्हारे पीछे नहीं भागूंगा, क्योंकि तुम मेरे मंत्री सेनापति, तुम मेरे कर्मचारी हो, मैं राजा हूं, और राजा आत्मा राजा की बात उसके कर्मचारियों को माननी ही पड़ेगी, इसलिए मैं तुम्हें ऑर्डर करता हूँ कि हे मन, हे बुद्धि, अब मैं तुम्हारे कहने पर तुम्हारे पीछे पीछे नहीं भागूंगा, अब तुम्हें मेरे कहने पर चलना पड़ेगा। इस तरह बाबा पहले अपने स्वधर्म में स्थित हुआ, कोशिश करी, उसके बाद मन और बुद्धि चूंकि कहीं बाबा के फिर भागे नहीं, इसलिए बाबा 33 वर्षों में कितने कम समय में अधर कुमार होते हुए भी, उल्टी सीढ़ी चढ़े हुए भी, फिर भी बाबा संपूर्ण बन गया। तो अब हमें भी यही देखना है, बाबा ने यही कहा कि कैसे करें मन को ऑर्डर, उसकी विधि भी बाबा ने बताई है कि रोज रात को सोने से पहले अपने मन बुद्धि की दरबार लगाओ और मन बुद्धि को ऑर्डर करो, कल तुम्हें ये करना है, आज मैंने तुम्हें ये ऑर्डर किया लेकिन तुमने नहीं माना, सारा दिन का एनालाइज करो, मैंने मन को ये कहा फिर भी मन ने मेरी आज्ञा न मान के इस बात को सोचा, इस तरीके से दृष्टि मन की गई, इस तरीके से बुद्धि गई। तो रोज रात को सोने से पहले मन बुद्धि संस्कार की हम दरबार लगाए, और उससे क्या होगा कि फिर मन और बुद्धि संस्कार जो है हमारे कहने पर सदा चलेंगे, हमें ये कहने का मौका नहीं मिलेगा कि हे मन तुम बहुत चंचल है, भाग जाता है, नहीं। तो एक दूसरा ब्रह्मा बाबा का ये देखा, और तीसरा क्या देखा, ब्रह्मा बाबा जो है ना सदैव ही हर समय मनसा वाचा कर्मणा समय संकल्प हर चीज से व्यस्त रहते थे। इतनी आयु, 90 साल से भी ज्यादा की आयु, 93 ईयर तक हमने बाबा को देखा, साथ रहे, और बाबा सदा व्यस्त, सुबह अमृत वेले आके योग भी कराना, थोड़ा क्लास भी, मुरली सुनाना, फिर बाबा बच्चों के साथ मिलना, हर बच्चों के साथ उनकी बात, हर बच्चे को कहा बच्चे अपना जीवन कहानी लिख करके दो, तो जो जो बच्चे उस समय साकार में थे सबने दी, मुझे भी ये सौभाग्य हुआ, तब मैं भी 15-16 साल का था, हमने भी जीवन कहानी लिख करके दी। तो बाबा ने देखा बच्चे ये कोई नहीं, बस ये बताओ कि कोई मुख्य विकर्म तो नहीं करे हैं, विकारी तो नहीं बने हैं, कि नहीं बाबा कुमार दास, छोटी मोटी बातों में आज हमने घर में ये निकाल के खा लिया माता जी के बिना परमिशन के, या ऐसा चोरी कर ली, या ये सब छोटे मोटे वो हैं, मुख्य है पवित्रता की बात। तो इसीलिए ये खास देखते चलना है कि कोई भी अभी तक जो कुछ हुआ सो हुआ, उसका हमने जितना गलत किया उतना ही दंड मिलेगा, लेकिन अब अगर हमसे कोई भी गलत हुआ तो 100 गुना अगर प्राप्ति है तो 100 गुना दंड भी है। इसके लिए बड़ी सावधानी की जरूरत है, इसीलिए जितना जितना हम ईश्वरीय कार्य में व्यस्त रहेंगे तो उतना उतना हमसे कोई भी विकर्म होने की संभावनाएं नहीं रहेंगी। इसीलिए आवश्यकता इस बात की है कि व्यस्त, लौकिक में भी कहा जाता है वेकेंट माइंड इज डेविल्स वर्कशॉप, खाली दिमाग शैतान का घर होता है, तो दिमाग को खाली ना रहने दे। और क्या करें, साथ साथ बाबा का ये देखा, जब बाबा तक हमारे मन की बात वाणी कर्म सब कुछ पहुंचता ही है तो कितनी अटेंशन की हमारी जरूरत है। और सबसे अच्छा ये है, बाबा ने भी जो कहा कि इस जन्म में अगर कोई पाप किए हैं तो वो बाबा को अगर लिख कर दे दो तो आधा माफ, कितना बड़ी अपॉर्चुनिटी है। अगर इस जन्म में 5-6 साल, 4-5 साल, बाबा ने कल परसों भी मुरली में बोला ना, इतना तो याद सबको रहता है 4-5 साल के बाद हमने क्या क्या किया है, अगर कोई ऐसे विकर्म हुए हैं कोई भी भाई बहन से या किसी रीति से, तो उसे लिख कर दे। जब साकार में बाबा थे तब तो हम लोगों को ये सौभाग्य प्राप्त था कि साकार के सामने ले जाते थे, बाबा देखते थे, और बाबा की कितनी बड़ी ब्यूटी थी। अगर 15-20-25 पेज भी हमने लिखे हैं, बाबा बस देखेंगे यूं 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 यूं, जल्दी जल्दी पलटा, बस उसी जगह पेज पर बाबा के रुकेगा ध्यान, जहां पर कोई कमी कमजोरी विकर्म की बात लिखी होगी। इतना बाबा का वो सेल्फ कंट्रोल और वो था। देखा बाबा बस उसकी बात की। अभी भी ये नहीं समझो साकार में तो बाबा नहीं है तो हम क्या करें, नहीं, हम सबके साथ बाबा पल पल है। बस अभी भी यहाँ पर जब आए हैं कोई भी बात हो वो लिख करके दे दे, भले उसमें आप अपना नाम मत लिखिए, जगह भी मत लिखिए, किस जगह कर्नाटक से या कहीं से आए हैं, जिससे आपकी आइडेंटिटी खुलने का मौका अगर किसी को ना रहे। नहीं तो ये भय रहता है, चलो बाबा दादियां तो महान हैं, लेकिन और जो लोग हैं उन तक हमारी कोई कमजोरी की बात पहुंची तो वो सब जगह फैला देंगे। तो इसीलिए बाबा को पत्र लिखो, ना अपना नाम लिखो नीचे, ना जगह लिखो, ना स्थान लिखो, कुछ नहीं, बाबा तक वो जैसे जब से आपने लिखा तब से पहले ही पहुंच जाएगा। और इससे बड़ा और क्या सौभाग्य होगा कि आधा माफ। तो ये आधा माफ हो जाना कितना बड़ा है। आपने कर्ज लिया किसी से, कर्ज लिया हुआ है मानो 50 लाख रुपया, और 25 लाख माफ हो जाए, कितनी खुशी की बात है। तो ये कर्जी है, पुराने विकर्मों का बोझा ये हम लोगों के ऊपर कर्जी है। इसलिए इसे हम यहाँ आए हैं तो इतना अपने को हल्का करके जाए, बस बाबा की भंडारी में डाल के जाए, फिर ये सोचे नहीं क्या हुआ, टेक इट ग्रांटेड ले लें कि हमारा आधा माफ हो गया, और मैं बिल्कुल आप हल्केपन का अनुभव भी करोगे और ऐसा रहेगा। और बाबा का क्या देखा साथ में, साकार बाबा का, कि बाबा जो है ना सबसे बड़ी, जब हम आत्माएं साधारण नहीं महान आत्माएं बन रही हैं, तो इसीलिए महान आत्माओं का एक सबसे बड़ा दिव्य गुण तो इतने ही है जो बाबा ने बताए हैं, आत्मा के साथ गुण शक्तियां वो सब, लेकिन सबसे बड़ा गुण है आत्माओं का, अष्ट रत्नों का, माला के मणकों का, विजयी रत्नों का, वो है क्षमा का गुण। किसी की बात को हम दिल में ना रखें। होता क्या, किसी की कोई बात देखी, अरे ये भाई या ये बहन तो 20 साल से ज्ञान में है, मैं तो अभी 4 साल से ज्ञान में हूँ, 8 साल से हूँ, अगर मेरे अंदर भी ये कमी रही तो क्या। उसकी कमी को देखा, वो हमारे अंदर गहरी बैठ जाएगी, हम अपनी निकालने की बात तो दूर रहे, दूसरों के कमियों के भी डस्टबिन बनते जाएंगे, कचरा पेटी बनते जाएंगे, और हमारे अंदर दूसरों के अवगुणों का भंडार इकट्ठा होता रहेगा। इसीलिए भगवान से कोई फरियाद नहीं करो, वो ऐसा है बाबा, वो ऐसा। किसी की अगर हम कोई ऐसी बात देखते हैं तो बस उसके प्रति शुभ भावना, शुभ कामना, और जो बाबा आजकल कहता है दुआएं, दुआएं, बाबा इस आत्मा की बुद्धि को श्रेष्ठ बनाओ जिससे इस कमजोरी से ये बाहर निकले, बस उससे ज्यादा कुछ नहीं। वो फिर बाबा का काम बाबा निकालेगा, लेकिन अगर मैं उसका चिंतन ही करता रहा दूसरे की कमी कमजोरी का, तो मैं उसका भंडार बन जाऊंगी। तो ये साकार बाबा का एक और गुण देखा। और क्या देखा, जितना जितना हम आगे बढ़ते जाएंगे उतना उतना स्थूल से सूक्ष्म की तरह। हम जब बताया पहले बाबा के पास जाते थे, बाबा से कई बात पूछा करते थे, बाबा उसका समाधान करते थे उत्तर, लेकिन अंतिम दो दिनों में 17 और 18 जनवरी 1969 में बाबा के सम्मुख गए, बाबा से ये बात पूछेंगे। बाबा ने दृष्टि दी और दृष्टि दे के बस, बच्चे ये पूछने आए हो, अच्छा ऐसा कर लो, ऐसा हो जाएगा। मतलब मन की बात भी बाबा तुरंत पढ़ लेते थे, इतना बाबा का अपना मन साफ हो चुका था कि दूसरे के मन की बात को तुरंत पढ़ लेना। अब हमारे सामने तो बाबा थे, तो बाबा का मन ये हम लोगों ने पढ़ा। मेरे साथ भी 4-5 बार कम से कम उन 2 दिन में ये हुआ, 17 और 18 जनवरी को, बल्कि और ज्यादा बार भी, कि बस बाबा से जाते थे, ये पूछेंगे, जो भी बात होती थी बस बाबा ने दृष्टि दी, बाबा बता देते और समाधान भी कर देते थे। अब दुनिया के सामने ब्रह्मा, बाबा, मामा, दादियां भी धीरे धीरे जाते जा रहे हैं, और कोई नहीं, हम और आप ही हैं। तो हम लोगों की मानसिक अवस्था ऐसी होनी चाहिए, मन इतना साफ होना चाहिए, जो मन जीते जगत जी, जो बाबा ने कहा ना, तो वो तभी होगा जब हम किसी की भी मन की, किसी की भी कमी कमजोरी की बात मन में नहीं रखेंगे। तो एक हमें ये देखते चलना है, अंतिम 2 दिन में हमें 17 और 18 जनवरी को एक तो ये अनुभव हुआ, ये ही अनुभव हमें दूसरों को कराना है। अपना मन हमें इतना साफ करना है कि हम दूसरे के मन की बातों को भी, सबकी बातों को स्पष्ट पढ़ सकें, और वो तभी हो सकेगा जब हमारा अपना मन साफ होगा। तो इसीलिए बाबा से हम कोई फरियाद नहीं करें, वो ऐसा है, वो ऐसी है, ये घटना हो गई, ये नहीं होना चाहिए था, ये क्यों हुआ, नहीं। वो सब घटनाक्रम चलते रहेंगे, लेकिन मुझे संपूर्ण बनना है। अंतिम समय ये नहीं होगा, कोई पूछेगा भाई तुम संपूर्ण क्यों नहीं बन सके बाबा, ये परिस्थिति आ गई, ये आ गई। परिस्थितियां तो सब पे आएंगी, लेकिन संपूर्ण मैंने बन के दिखाया। हर परिस्थिति में ये बाबा चाहता है हम बच्चों से उत्तर, और उस उत्तर के लिए हम तभी तैयार रहें, किसी को भी कमी कमजोरी की बात ना करें। छठी बात अगली, कि कोई भी काम हम पेंडिंग ना रखें, अधूरा चौथाई ना रखें। कई बार मन में होता है, अच्छा चलो मैं कल ये कर लूंगा, चलो सेंटर बनाना है, वहां नई जगह है, वहां पर तो ये धन दान करना है, कर लूंगा। बस जो जो काम हुए उसमें बाबा के चाहता है तुरंत दान, महापुण्य। अगर ये पोस्टपोन करते गए जितना जितना, उससे क्या होगा, बाबा ने अचानक एवर रेडी और बहुत काल, ये बात थ्योरेटिकली तो हम सब ने कई बार सुनी है, लेकिन हमारा अचानक एवर रेडी का पार्ट कितना है हमें कैसे पता चलेगा। तो इसीलिए अब ये होना चाहिए, करते चलें। और ब्रह्मा बाबा ने भी ये करा, बाबा ने भी अंतिम 2 दिन में देखा, बाबा मेरे ये 3-4 काम अधूरे रह गए। ब्रह्मा बाबा ने, एक तो बाबा को पत्रों के उत्तर लिखने बाकी थे, पहले तो पत्र बाबा हाथ से लिखते थे लाल लाल उसमें, और यीशु दादी जी हिंदी ट्रांसलेशन करके भेजा करते थे, तो पत्रों के उत्तर वो बाकी रह गया। तो बाबा ने उस दिन फटाफट जल्दी 1-2 घंटे में ही सब पत्रों के उत्तर लिख दिए, जिससे किसी बच्चे को ये न रहे कि अरे मैंने बाबा को पत्र लिखा और बाबा का जवाब नहीं आया। दूसरा बाबा का ये रहा कि कोई भी ऐसा बात ना हो किसी भी बच्चे की, बाबा से पूछी हुई हो और वो अधूरी रह जाए। इस कारण से बाबा नक्की लेक का जो म्यूजियम का मकान है, वो म्यूजियम के सेवा के लिए लिया हुआ था, तो वो बाबा ने फटाफट उस दिन लिया और साइन करे, और आज वो म्यूजियम विश्व का सबसे अच्छा स्टैंडर्ड का म्यूजियम है, जिससे काफी सारे सैकड़ों सेंटर भारत और विदेशों में खुले हैं, जो वहां से संदेश लेकर के गए। तो इसीलिए कोई काम पेंडिंग अधूरा न रहने दें, कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, नहीं। जो करना है पूरा करके चलते चलो आगे। तो बाबा ने वो काम भी पूरा किया। फिर बाबा ने एक काम और था कि बाबा ने उस दिन, रोज मुरली होती है 8:45 बजे रात को, उस दिन बाबा ने कहा आज बाबा 7 बजे ही मुरली चलाएगा, सब लोग भोजन करके 7 बजे तक हिस्ट्री हॉल में आ जाएं। पांडव भवन में हिस्ट्री हॉल है ना, तो सब लोग भोजन करके आ गए और उस दिन बाबा ने मुरली जो चलाई। तो एक बार भी बाबा को न खांसी आई न कफ आया, शरीर के जैसे सर्व कर्म भोगों के ऊपर बाबा के योग बल ने संपूर्ण रीति से विजय प्राप्त कर ली थी। तो हमारा भी यही लक्ष्य रहना चाहिए कि कोई भी बात हो तो कोई शरीर का कर्म भोग हमें अपनी तरफ ना खींचे। अंतिम समय होता क्या है, जैसा भक्ति मार्ग में भी कहते हैं, सुनते भी आए हैं, कि अंतिम समय जहां पर व्यक्ति का लगाव झुकाव जहां होता है या किसी से कोई खास दुश्मनी हो, वो व्यक्ति याद आ जाते हैं और उधर बुद्धि चली जाती है, तो अंत मते सो गति होने की वजह दुर्गति हो जाती है। तो ऐसा ना हो, ना हमारा किसी से लगाव झुकाव अटैचमेंट हो, ना किसी से हमारा दुश्मनी का भाव हो, वैर भाव हो। बस वो कहते हैं ना, जैसे कबीर दास जी ने भी बोला ना, कबीरा खड़ा बाजार में सबकी मांगे खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। ऐसी स्थिति होनी चाहिए अब हमारी, न तो किसी से हमारा लगाव झुकाव भाई बहन से हो कि उससे जब तक हम मन की कोई बात शेयर ना करें तब तक हमें चैन ना पड़े, ऐसी बात भी ना हो, और ना ही ऐसी बात भी हो किसी से कोई दुश्मनी का भाव हो, इस भाई ने ये बोला अच्छा इसे मैं भी दिखाऊंगा कि मैं क्या हूं, नहीं, बदले की भावना ये नहीं। तो इसीलिए एक ऐसी स्थिति वो हो अंत समय के लिए सबसे एक जैसा संभाव, न किसी से अति प्रेम भाव, वहां भी बुद्धि जाएगी, न किसी से अति दुश्मनी का भाव। ये भी बाबा में देखा अंत समय में। और क्या देखा अंत समय में, बाबा ने मुरली चलाई, मुरली चला के बाबा कमरे से बाहर गए। 18 जनवरी की बात मैं बता रहा हूँ, मैं सम्मुखी बैठा हुआ था, तो बाबा की वही कर्मातीत अवस्था, बिल्कुल बस अच्छा बाबा बच्चों से छुट्टी लेता है, विदा लेता है, ऐसा कह के बाबा गए। दरवाजे पर भी जो तीन शब्द हैं, निराकारी निरंकारी निर्विकारी, वो बोल के बाबा कमरे में गए। अपने कमरे में दादी प्रकाशमणि जी पीछे पीछे थे और दादी के साथ साथ, बस वहां जाके बाबा ने दादी को सब जैसे शक्तियां विल करी और नैनों में नैन मुलाकात करते हुए बाबा ने छुट्टी ली। हमारी भी यही हो कि बस अंत समय जाना तो सभी को है, लेकिन ब्यूटी तब है जब हम अपनी इच्छा से शरीर छोड़े। छोड़ना तो सबको है, शरीर हर एक छोड़ता ही है, पूरे दुनिया में जो भी पैदा हुआ है वो छोड़ना है, लेकिन हमें पहले से, जैसे ब्रह्मा बाबा को आवास हो गया था आज ये काम करना है, बाबा ने पहले बता दिया, क्लास के बाद गए, अच्छा बच्ची, बाबा बच्चों से छुट्टी लेता है, विदा लेता है, ये शब्द पहले कभी नहीं बोले बाबा ने। तो ये आभास है, जब हम ब्राह्मण बच्चों की ऐसी अवस्था हो जाएगी, हाँ बाबा अब मैं आपके पास आत्मा आई की आई, बस अंतिम समय में, तभी तो अंतमते सोगते विजयी रतन बनेंगे। तो ये तभी होगा जब हमारे मन में और कोई भी बात नहीं होगी, बस बाबा अब मैं आपके पास आया और यहाँ के मेरे सारे काम पूरे हुए। अगर कोई काम पेंडिंग रहा, बचा हुआ रहा, वो याद आता रहेगा, इसलिए न तो कोई काम भी पेंडिंग रहे और न कोई वो रहे। कोई भी, हाँ बहनों को भी जो भी घर की चाबी वाबी बहुओं को देनी है, कोई काम करना है, पहले से ही वर्क डिस्ट्रीब्यूशन करते चलें, अंत समय में वो याद ना आए फलानी ऐसी है, फलाना ये है, ये काम रह गया, ना भाइयों को बिजनेस का या धंधे का, पोते पोतियों का, किसी का कुछ याद नहीं। बिल्कुल सबसे न्यारे प्यारे हो करके, हाँ बाबा, ब्रह्मा बाबा ने कहा बाबा मैं आपके पास आया कि आया, और बाबा उड़ के चला गया अंतिम समय। और लास्ट पॉइंट कि बाबा ने आत्मा को तो इतना पवित्र बना ही लिया, ये देखा हम लोगों ने, अंत समय तक इच्छा के अनुरूप बाबा ने शरीर छोड़ा वो, हाँ। लेकिन मुख्य बात ये तत्व भी, पांच तत्वों से बना शरीर भी, बाबा ने तत्वों को भी इतना पवित्र कर दिया था। पांच तत्व जिनसे बना ये शरीर है, जल, अग्नि, वायु, पृथ्वी, आकाश। तो बाबा यही कहता है कि आत्मा को भी पवित्र बनाओ और इन तत्वों से बने शरीर को भी पवित्र बनाओ, जितना जितना ये दोनों पवित्र होते जाएंगे उतना उतना संपूर्ण बनके आप मेरे पास आते जाएंगे। तो बस अब बाबा से ना कोई फरियाद करनी है, बाबा को याद करते करते और किसी की भी कोई बात को देखना ही नहीं है, उधर से मुंह फोल रहे और अपना आगे बढ़ते रहे। कोई वजह नहीं कि बाबा को हम जैसा बच्चा दूसरा मिले। वी एंड बाबा, वी आर मेड फॉर ईच अदर, हम और बाबा एक दूसरे के लिए बने हैं। ऐसे संपूर्ण होके जाएंगे और अंत समय बाबा के पास हमें जाना है। अब अंत में हम लोग फिर 5-10 मिनट योग लगा के जो सुना उसको धारण करने का संकल्प ले करके कि बाबा इतनी शक्ति दो कि जो जो आप जिससे संपूर्ण बने, कर्मातीत बने, जो जो आपने धारणाएं की वो मैं भी धारण करके आपके साथ पीछे पीछे संपूर्ण होके आ सकूं। तो अंत में फिर हम लोग 5 मिनट गीत कोई संपूर्णता का बाबा का लगाए और उसे सुने और बाबा से अपने संकल्पों को हम दोहरा करके इन संकल्पों को, क्योंकि सुनते वक्त तो अच्छा लगता है लेकिन ब्यूटी तब है जब उन संकल्पों के ऊपर हम प्रैक्टिस भी करें और वैसा बन के बाबा को दिखाएं। ओम शांति, ओम शांति।
तेरी याद का दीप जले मन में, एक ज्योत जगे इस जीवन में। तेरी याद का दीप जले मन में, एक ज्योत जगे इस जीवन में। रहता है कमल जैसे जल में, रहता है कमल जैसे जल में। मैं है तो। एक ज्योत जगे इस जीवन में।